तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के दौरान अब हम जो आगे चीज़ देखेंगे वो क्या है कि जिना खुद तो नहीं किया, किसी को करते देखा। यानी समझ लीजिए अब आयत नंबर 4 से सबक के आखिर तक का टॉपिक क्या है, खुद तो जिना नहीं किया, किसी को करते देखा उसके साथ क्या किया जाए। देखा है तो, और देखने में फिर अगला जो मसला आएगा कि अगर अपनी बीवी के अंदर ही कोई ये चीज़ देख ले तो फिर क्या होगा। आइए ज़रा आयत नंबर 4 का मैं खुलासा करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो बातें उसको हम डिस्कस करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाएं। यरमून का लफ्ज़ रमी से है, हज पे जाते हैं तो रमी जमार करते हैं ना, वही लफ्ज़ है ये भी, रमी पत्थर मारना। लेकिन यहाँ इससे मुराद क्या है, तोहमत लगाना। क्योंकि जब किसी को ब्लेम किया जाता है, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो वो भी एक किस्म का उसके ऊपर पत्थर ही मारा जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। अल मुहसनात का लफ्ज़ जो है आप पीछे पढ़ चुके हैं 5वें पारे के शुरू में, कि मुहसिना कहते हैं ख़ानदानी औरत को भी पाक दामन के मानों में, और इसी तरह से शादीशुदा औरत, दोनों मुराद हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही मुराद है। एक तो वो औरतें जो खुद ही बाजारी हैं, जो गंदे काम करती हैं, जो पेशा करती हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत इस्मत को तार तार कर दिया, उनके बरक्स जो औरतें, यानी सीधी सादी पाक दामन औरतें, और दूसरा इसे मुराद किसी की बीवी भी हो सकता है, यानी शादीशुदा औरतें जो हैं, तो उस पर तोहमत लगाएं। या तोहमत से मुराद नोट कीजिएगा कि जिना की तोहमत लगाना किसी के बारे में, फिर क्या ना कर सके, सुम्मलम या तो भी और बहुत ही शुहदा, फिर वो ना ला सके 4 गवाह। कौन? तोहमत लगाने वाले। तो अब क्या करो, फजलिदूहुम, तो कोड़े मारो उनको। किनको? जिसने ये तोहमत लगाई। कितने? 80 80 कोड़े, 80 whips। पहली सज़ा। दूसरी इनकी सज़ा क्या है? वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो। यानी ये किसी भी मामले में गवाह नहीं बन सकते। मसलन शादी के मौके पे आपको पता है कि 2 गवाह चाहिए होते हैं ना, निकाह के 2 गवाह होते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कभी भी कज़फ की हद लग चुकी हो, वो किसी की शादी का गवाह नहीं बन सकता। इसी तरह लेन देन के मसाइल होते हैं, किसी ने ज़मीन ख़रीदी, किसी ने ली दी, तो गोया कि एक किस्म की उसकी बदनामी हो जाएगी कि इसकी गवाही नहीं होगी, मरदूद शहादा हो गया। और तीसरा अल्लाह का उनके बारे में फ़ैसला है कि वउलाइक हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं। अब आप यहाँ देखिए, तो इसको कहते हैं हद कज़फ। कज़फ का भी लफ्ज़ी माना यही होता है फेंकना, कज़फ़ा के मानों में। मतलब ये पता चला कि अगर कोई किसी के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाए और उसको 4 गवाहों के ज़रिए साबित ना कर सके, तो उस बात कहने वाले को 80 कोड़े पड़ेंगे। ज़रा लिखिए, जिसने बिलफेल ये गंदा काम किया उसकी सज़ा 100 कोड़े। चलो कुछ किया ना, कुछ लज्जत ली, कोई हद तोड़ी, कोई नशा सर पे चढ़ा गुना का, कितना कुछ उसका इन्वॉल्व हुआ, उसकी सज़ा में 100 कोड़े। और जिसने तोहमत लगाई उसका क्या हिला? सिर्फ ज़ुबान का ये टुकड़ा, यानी शर्म का और ज़ुबान के फेल में सिर्फ 20 कोड़ों का फ़र्क है। तो किसकी हिफाजत फिर करने की ज़रूरत है? इसीलिए आप देखते हैं कि शर्म का और ज़ुबान की हिफाजत का साथ साथ जिक्र आता है, आगे इस सूरत में भी हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा ज़ुबान को सोच के इस्तेमाल करो। दूसरी बात यह कि इस्लाम इस बारे में दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता कि लोग मजाक ही बना लें, किसका किसके साथ मामला, किसने किस पे कहा। इस एक आयत पर अमल से स्कैंडलिज्म ख़त्म हो सकता है। आज के दौर में जिसको आप स्कैंडल कहते हैं ना, वही असल में इधर चल रहा है। किसी पर तोहमत लगाना, आपने जब तक देखा नहीं है आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम उसने किया। तो लिहाजा किसी मशहूर शख्स, किसी सियासतदान, किसी मजहबी लीडर, किसी आर्टिस्ट, गुलोकार, फलां, बड़े बड़े इवनिंग न्यूज़, सारे इवनिंग स्पेशल ही ख़त्म हो जाएं अगर इस एकायत पे अमल कर लिया जाए। एक सनसनीखेज खबर फैला दी जाती है। ये सब लोग हैं जो इस्लाम नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इस्लाम आएगा तो हम सारे इन चीज़ों पर पड़े होंगे। आज देखिए कि बाज़ दफ़ा फ़िक्शन के नाम पर कुछ चीज़ें आम की जाती। रॉबिन हुड कितना मारूफ किरदार है, क्या है जी, वो अमीरों से दौलत छीन कर चोरी करके गरीबों को बांटता था, और ज़रबुल मिसल है जी, बड़ा रॉबिन हुड बनता है वो, या बड़ा रॉबिन हुड है। अगर इस्लाम आ जाएगा तो रॉबिन हुड जो है वो उसका हाथ कटा होगा। इस्लाम नहीं कहता कि अमीरों से लेके गरीबों से दो, ये अल्लाह के कानून है, तुम अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिसको अल्लाह ने दौलत ज़्यादा दी है ये उसका कसूर नहीं है, या जिसको नहीं दी उसका कसूर नहीं है। तो लिहाजा ज़ुबान के इस्तेमाल पर बोहतान की सज़ा 80 कोड़े कह दिए गए। और आप देखिए कि इसमें हिकमत ही यह है कि बुराई ना फैले। यहाँ छठे पारे की पहली आयत भी याद कर लीजिए कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह नहीं चाहता कि बुराई का चर्चा हो, अल्लाह नहीं चाहता किसी के स्कैंडल आम हो, फिल्मों की कहानियाँ आम हो, किसी के कोई चर्चे आम हो। आगे हम पढ़ेंगे आयत की नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअ अल्फ़ाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू। कुछ लोगों का तो टारगेट ही ये है कि ईमान वालों में बेहयाई आम हो। तो कहते हैं कि बुराई तो बुरी होती है, बुराई का जिक्र उससे भी बुरा होता है। आज अगर हम ये सारी चीज़ें अपने अखबारों, रिसालों, मीडिया से निकाल दें तो रूखी फीकी खबरें रह जाएंगी पीछे सिर्फ। फिर वो चंद लोग ही सुनेंगे जिनको संजीदगी से किसी मसले का फिक्र है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना करो। गवाह नहीं ला सकते तो मुजरिम हो। कब तुम दूसरों का बात बचाओ? जब चार हो। तो अमूमन चार कब होंगे? जब सरेआम होगा, ठीक है। हाँ, अब कर चुके, अब क्या करो? इल्लज़ीना ताबु मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद कोई तौबा कर ले, वसलहु, और अपनी इसलाह कर ले, तो फ़इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ क्या पता चल गया कि तौबा का दरवाज़ा इसके लिए भी खुला है। तो हम सब शौरी तौर पर जो भी किसी के बारे में कभी कुछ कहा, सोचा, उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। बाद दफ़ा लोग ज़ुमानी बातें कर देते हैं, आपको क्या बताऊँ फ़लाँ कैसा, पूरी बात बताने से हो सकता है इतना बड़ा जुर्म सामने ना आए जितना आधी बात बताने से जुर्म जहन में आ जाता है। अच्छा, अब ये बात तो पूरी हो गई, अब क्या पता चला कि किसी को गलत काम करते भी देखा तो चुप रहो। लेकिन जब मामला घर का हो, कोई शौहर अपनी बीवी में कोई ऐसी बुराई देखे तो कैसे चुप रहे? इसका जवाब आयत नंबर 6 और अगली आयतों में। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम, और वो लोग जो अपनी बीवियों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाएं, ठीक है। पहले क्या था, किसी और मोमिन औरत पे किसी और ने लगाया, लेकिन शौहर अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा देता है। वलम यकुल लहुम शुहदा, और उसके पास उसके कोई गवाह भी नहीं है, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी ही जान। यानी शौहर ने इस हाल में देखा कि उसके पास और कोई गवाह है भी नहीं, और ऐसे वक्त में कोई गवाहों को ढूंढने भी नहीं जाएगा, अब ये शौहर क्या करे? बात वाजे हुई है। देखिए ना, किसी दूसरे में कोई बुराई देखी तो बंदा चुप कर ले कि भाई ठीक है, मेरा क्या इससे ताल्लुक़ है, लेकिन शौहर देखे तो क्या करे? और इस पे वाक़या भी आता है। हिलाल बिन उमैया, नाम सुने इनका कभी? क्या बात पढ़ी है आपने इनके बारे में पहले? अल्लज़ीना खुल्लिफ़ु अलस्सलासा, सूरह तौबा में वो तीन लोग जिनकी तौबा कबूल होने में अल्लाह ताला ने वक्त लिया था, मौखर की थी, उन्हीं में से हिलाल बिन उमैया थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैंने अपनी बीवी के साथ फलां को देखा है। उस दौर में भी इक्का दुक्का ऐसे लोग होते थे, क्योंकि शैतान मायूस तो नहीं हो गया था ना। तो अल्लाह के नबी ने इनकी बात सुनकर नागवारी का इज़हार किया, कहा कि गवाह लाओ। कहा अल्लाह के नबी ऐसे वक्त में कौन गवाह ढूंढने जाएगा? कहा अगर गवाह नहीं लाओगे तो 80 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर इनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं सच कह रहा हूँ और मेरी बात नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी तो कुरान से बात करते थे, जब तक कोई हुक्म बदलता नहीं था, आता नहीं था, अल्लाह के नबी खामोश रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे यकीन है कि मैं सच्चा हूँ, अल्लाह ताला मेरी बेगुनाही साबित करेगा। तो ये आयात नाजिल होके लियान का कानून साबित हुआ। क्या होता है लियान, थोड़ी सी इसकी डिटेल यहीं समझ लीजिए। जब कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह देखता है जिसको आम हालात में दूसरों का देखकर इंसान इग्नोर भी कर सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो और उसकी बीवी दोनों अदालत में जाएंगे। अदालत में जाकर 5 दफ़ा कसम खानी होती है, जिसकी डिटेल यहाँ आयतों में भी आ रही है। शुरू में 4 दफ़ा तो शौहर कहेगा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अपनी बीवी को गलत काम करते देखा है, और 5वीं दफ़ा फिर साथ ही इजाफा कर देगा कि अगर मैं इस पे झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अब वो वहाँ से हट जाएगा तो फिर उसकी जगह बीवी आएगी, और वो फिर उस कसम को पलटाएगी कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया और ये झूठ बोल रहा है, यानी वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ बात करेगी। और 5वीं दफ़ा वो कहेगी कि अगर मैंने झूठ बोला तो अल्लाह मुझ पर लानत डाल दे। ये 5 दफ़ा करने के बाद जब ये मामला होगा तो दोनों में हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। यानी तलाक की संजीदा तरीन और बहुत सीवियर किस्म की ये कसम है, लेआन लानते डालकर एक दूसरे से अलग होना। अब ये लोग फिर हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, ना इनका कभी निकाह हो सकता है और ना रुजू हो सकता है। इसको लेआन कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पढ़ते वक्त ज़ाहरी बात है कि इंसान के जहन में आता है कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन जहाँ सच्चा दीन आएगा, इस्लाम आएगा, ऐसे वाक़यात ज़रूर आएंगे। आज के दौर में तो इस तरह की बातें हैं ना कि जिसको हम दूसरों के इखलाक और किरदार और अच्छे ताल्लुकात की एक दलील बना देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने एक रास्ता निकाल दिया कि शौहर ज़ाहिर है कैसी बीवी के साथ रहना भी पसंद नहीं करेगा, तो बीवी भी नहीं रह सकती। जैसे भी मामला होंगे तो फिर वो दोनों कस्में खाकर अलग हो जाएंगे। अब होगा क्या? फशहादत अहदिहिम, यहाँ से अब तरीका शुरू हो रहा है। बस गवाही देना है हर एक का उनमें से, अरबा शहादत बिल्ला, 4 दफ़ा गवाह बनाना अल्लाह को। क्या कहेगा शौहर? इन्नहु, यहाँ देखिए ज़मायर से पता चल रहा है कि शौहर कह रहा है कि बीवी, बेशक वो लमिनस सादिकीन, वो सच्चा। यानी सबसे पहले शौहर आएगा और वो कहेगा कि मैं अपनी इस बात में बिल्कुल सच्चा हूँ और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच है। 4 दफ़ा जब ये बात कह चुकेगा, वल खामिसतु, और फिर 5वीं बार, 5th टाइम क्या होगा? वो कहेगा, यहाँ खामिसतु से मुराद बार है, 5वीं बार, इसीलिए मुअन्नस का सीगा है। 5वीं बार वो कहेगा, अन्न लानतुल्लाहि अलैहि, यानी उस पर लानत हो, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठा हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ तक मर्द की गवाही ख़त्म हो गई, आयत 8 के आगे लिख लीजिए। अब औरत की बारी है। वह यदरऊ अनहल अज़ाब, और वो दूर करेगा अजाब उससे। यदरऊ का लफ्ज़ कभी पढ़ा आपने पहले कुरान में? कहाँ पढ़ा? पहले पारे में, चलिए, गाय का वाक़या, फद्दारा तुम फीहा, तुम एक दूसरे से इल्ज़ाम हटाने लगे। गाय के वाक्य में आया था कि उस औरत से, अब यहाँ से औरत की बारी है, कि यदरा उनहल अजाबा, उस औरत से अजाब को टाल सकती है ये बात, अन के तशहदा, वो औरत गवाही दे। अब ये तशहदा में ता जो है ना, ये मुअन्नस की है। अब वो औरत गवाही देगी, अरबा शहादातें बिल्ला, 4 दफ़ा गवाही देना अल्लाह के नाम की, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, के वो शौहर झूठा। यानी औरत क्या कहेगी कि मेरा शौहर झूठ बोल रहा है। वल खामिसत, और 5वीं बार, अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा, ये कि गज़ब है अल्लाह का उस पर, इन काना मिनस सादिकीन, अगर वो सच्चों में से हो। यानी फिर वही सेम बात औरत रिपीट करेगी कि अगर मेरा शौहर सच बोल रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझ पर अल्लाह ताला का गज़ब आ जाए। इस तरह से लियान हो जाएगा और दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, वलौल फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती, वअन्नल्लाहा तव्वाबुन हकीम, तो ये कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। यहाँ आप देखिए कुछ लफ्ज़ हज़फ़ हैं, अंडरस्टूड हैं जिसको आप कहेंगे, और वो क्या कि अगर अल्लाह का फ़ज़लो करम और रहमत तुम लोगों के शामिल हाल ना होती, और ये बात ना होती कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला और साहिब हिकमत है, तो बीवियों पर इल्ज़ाम का मामला तुम्हें गलत रास्ते पर डाल देता, तुम कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेते, और ऐसे काम जब तुम कर लेते तो फिर तुम्हें पकड़ होती। अब आप देखिए कि यहाँ कज़फ की बात आ गई, बीवी और शौहर के लेआन की बात आ गई। असल में ये अब अगली आयतों में आने वाला वाक़या, जो हज़रत आयशा पे तोहमत लगी थी, उसका आगाज़ था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये मौजू पूरा हुआ कि सारी बात का खुलासा क्या है। अब जितना कुछ हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा है, इसको मैं चंद जुमलों में मिटना चाहूँगी। पहली बात है कि अल्लाह ताला को हक है कि वो हमें कवानीन दे, चूँकि उसने पैदा किया है तो वो बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो भी कानून बनाया उसकी हिकमत बनाई है। फिर अगली बात, जिना की सज़ा अगर सख्त है तो सज़ा दिलवाने की शरायत उससे भी सख्त है। रह जाते आते जाते हद नहीं लगती, उसके लिए पूरे कवानीन है। फिर अगली बात क्या पता चली कि ईमान का तकाजा है कि इन अहकामात को ना सिर्फ ये कि माना जाए بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی جن سے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے اور کھل کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں معاملات کیسے ہوتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ دو اعرابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا اور اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، میں نے فدیے کے طور پر 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کو دے دی۔ سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کا جرم چھپانے کے لیے اس کو پیسے دے دیے، بکریاں دے دی، لونڈی دی۔ پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اس کی بیوی کی سزا رجم ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں تم میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں، لونڈیاں اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی، یعنی یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اے انیس، تو اس کی بیوی کا بیان لے کہ جا کے اس کی بیوی سے پوچھو۔ حضرت انیس قبیلہ اسلم کے ایک شخص تھے، اگر وہ اپنی سیاہ کاری کے اقرار کرے تو اسے سنسار کر دینا۔ چنانچہ اس بیوی نے اقرار کیا اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ تو کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کنوارے پر 100 کوڑوں کے ساتھ سال کی جلا وطنی ہے۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس جلا وطنی کا، حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور شادی شدہ ہے تو رجم ہے۔ اسی طرح موتا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر نے اپنے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کی آیت تھی جسے ہم نے تلاوت کیا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو رجم کی آیت کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح اس فریضے کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا کتاب میں حکم موجود تھا، اب یعنی اس کا حکم موجود ہے لیکن اس کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے۔ تو گویا کہ پھر اگر آج ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو اس طرح سے ماننا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد اور سنن اربعہ اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات لے لو، میری بات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، کنوارا لڑک کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم ہے۔ سورۃ نساء میں آیا تھا نا کہ ان عورتوں کو ان گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ جو سورۃ نور کی آیت ہے نا، یہ اصل میں وہ راستہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا۔ اب ایک اور چیز ہم نے پڑھی کہ تمہیں اللہ کے ہاتھ کے معاملے میں کسی طرح کا رحم ان پر نہ آئے، ٹھیک ہے، لا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ۔ اس کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے کہ کیا ہمیں ترس نہیں آنا چاہیے بیچاروں پہ، ہائے بیچارے۔ تو اس پہ دیکھیے، دل کا رحم اور چیز ہے، وہ تو آتا ہے اس بات پہ کہ ہائے یہ گناہ کیوں کر رہا ہے، لیکن جہاں تک حد کے جاری کرنے کی بات ہے تو امام کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ سزا کو کم کرے یا اس میں زیادتی کر دے۔ حدیث میں کہ آپس میں حدود سے درگزر کرو، یعنی پہلے ہی بات نہ اچھالو، لیکن جو بات مجھ پر پہنچی اور اس میں حد ہو تو وہ واجب اور ضروری ہو گئی۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں ہائے حدود، آرڈیننس، ظلم کی حد، کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں حدود لگ گئیں تو سارے ہی ٹنڈے ہو جائیں گے اور سارے ہی مارے جائیں گے۔ حدیث نوٹ کر لیجئے کہ حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ 40 دن بارش ہوتی رہے کسی ملک میں تو جو سبزہ پھل اگے گا نا، اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس دن اترتی ہیں جب ایک حد لگ جاتی ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ اس کے بعد وہاں جرم ختم ہو جائیں گے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہم نے خود ہی اللہ کی رحمتوں کو دور کیا ہوا ہے نا۔ یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کرو بلکہ درمیانے طور پر کوڑے لگاؤ، یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو۔ تہمت لگانے والے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کے جسم پر کپڑے ہونے چاہیے، جبکہ زانی پر حد لگانے کے وقت کپڑے نہ ہوں۔ یہ حماد بن ابو سلیمان ہے، ان کا قول ہے۔ پھر اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے، تو तो हज़रत नाफ़े ने इसी आयत का ये जुमला तिलावत किया कि अल्लाह की हद जारी करने के मामले में तुझे तर्स नहीं आना चाहिए। आपने फरमाया, क्या तेरे नज़दीक मैंने इस पर कोई तर्स खाया? सुनो, अल्लाह ने इसके मार डालने का हुक्म नहीं दिया, ना ये फरमाया कि इसके सर पर कोड़े मारें। मैंने इसे ताकत से कोड़े लगाए और पूरी सजा दी, यानी कमर पर, बैक पर लगाने चाहिए। आपको पता है कि वो स्ट्रांग होती है, यानी इंसान उस मार से फिर बच जाता है। और फिर इसी तरह एक हदीस में आता है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तो बकरी को ज़िबा करता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। आपने फरमाया, इस पर भी तुझे रहम का अजर मिलेगा। यानी मुराद है कि रहम बुरी बात नहीं है, लेकिन रजम बुरी चीज़ नहीं है। जिसने गुनाह किया, जब उसको सज़ा मिलेगी तो दूसरों पे बहुत ज़्यादा रहम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आयत थी, आयत नंबर 3, जिसमें अज़ानी ला यन क्यों अल्ला ज़ानिया तो नव मुशरिका, आयत तो कर ली, लेकिन इसके अंदर एक वाक़या भी आता है जो मैंने आपको सूरह बकरा की उन आयतों की तफसील में भी बताया था। मरसद बिन मरसद नाम का सहाबी, याद आया किसी को, जो मदीना में आए थे। सुन लीजिए, वाक़या सुनाई देती हूँ, तिर्मिज़ी की रिवायत है। एक सहाबी जिनका नाम मरसद बिन अबू मरसद था, मक्का से मुसलमान कैदियों को उठाकर लाया करते थे और मदीना पहुंचाते थे। उनाक नामी एक बदकार औरत मक्के में रहा करती थी। जाहिलियत के ज़माने में इनका इस औरत से ताल्लुक़ था। हज़रत मरसद फरमाते हैं कि एक मर्तबा में एक कैदी को लाने के लिए मक्का शरीफ गया। मैं एक बाग की दीवार के नीचे पहुंचा, रात का वक्त था, चांदनी छुटकी हुई थी। इत्तेफाक से उनाक आ पहुंची और मुझे देख लिया, बल्कि पहचान भी लिया और आवाज़ देकर कहा, क्या मरसद है? मैंने कहा, हाँ मरसद हूँ। इसने बड़ी खुशी जाहिर की और मुझसे कहने लगी, चलो रात हमारे यहाँ गुजारना। मैंने कहा, उनाक, अल्लाह ताला ने जिनाकारी हराम कर दी है। जब वो मायूस हो गई तो इसने मुझे पकड़वाने के लिए शोर मचाना शुरू किया, क्या खैमे वालों होशियार हो जाओ, देखो चोर आ गया है, यही है जो तुम्हारे कैदियों को चुरा कर ले जाया करता है। लोग जाग उठे और 8 आदमी मेरे पकड़ने को पीछे दौड़े। मैं मुठियाँ बंद करके खंदक के रास्ते भागा और एक गार में जा छुपा। ये लोग भी मेरे पीछे ही पीछे गार में आ पहुँचे, लेकिन मैं इन्हें ना मिला। ये वहीं पेशाब करने को बैठे, वल्लाह ही इनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने इन्हें अंधा कर दिया। इनकी निगाहें मुझ पर ना पड़ी, इधर उधर देखभाल कर वापस चले गए। मैंने कुछ देर गुजार कर जब ये यकीन कर लिया कि वो फिर सो गए होंगे, तो यहाँ से निकला, फिर मक्के की राह ली और वहीं पहुँच कर इस मुसलमान कैदी को अपनी कमर पर चढ़ाया। कमिटमेंट देखें, हम तो कब के चले गए होते दीन का काम छोड़ के, सॉरी ये नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता। इनके वाक़यात में हमें कितने सबक मिलते हैं ना। किस चीज़ ने मरसद को रात के अंधेरे में रोका? कौन था जो उनको बुराई करने से रोकता? अकेले भी थे, जवान भी थे, चांदनी रात भी थी, दौरे जालियत की महबूबा भी थी, दावत फिर औरत ही दे रही थी, मजबूर भी थे। ये है वो जो अपने बच्चों के रखें। आप अपने बच्चों के सर पर सवार होंगे ना, कभी भी नहीं उनका दीन पक्का होगा। वो इंतज़ार ही करते रहेंगे, अम्मी इधर से उधर हो, ज़रा अम्मी आँख बचा के कुछ चीज़ देख लें। ये असल में तरबियत होती है कि तन्हाई में भी ना बंदा गुनाह करे। और इससे आगे भी देखिए कि फिर अल्लाह के नबी से आके कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं इनसे निकाह कर लूँ। इससे भी पता चलता है कि दिल में कोई नफरत भी नहीं थी। ये किरदार आज चाहिए हमें अपने मुसलमान बेटों का और भाइयों का। खैर, वापस गए, फिर काम करके ही आए। ये बात हमारे लिए बहुत काबिल गौर है। इसमें खैर, कैदी को अपनी कमर पर चढ़ाया और वहाँ से ले भागा। चूँकि वो भारी बदन के थे, जब मैं असगर में पहुँचा तो थक गया। मैंने इन्हें कमर से उतारा, इनके बंधन खोल दिया और आज़ाद कर दिया। अब उठाता चलाता मदीने पहुँच गया। चूँकि उनाक की मोहब्बत मेरे दिल में थी, मैंने रसूलुल्लाह से इजाज़त चाही कि मैं इसे निकाह कर लूँ। आप खामोश रहे। मैंने दोबारा यही सवाल किया, आप फिर भी खामोश रहे। उस पर रियायत नाजिल हुई थी, आयत नंबर 3, अज़ानी ला यन के हो इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। तो आप देखिए कि इससे पता चलता है कि निकाह की इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन जिना की इजाज़त नहीं ली और नहीं की। तो आयत उतरी तो आपने कहा कि मरसद ज़ानिया से निकाह, ज़ानी या मुशरिक ही करता है तो इससे निकाह का इरादा छोड़ दे। अल्लाह, अबू दाऊद वगैरह में कि ज़ानी जिस पर कोड़े लग चुके हों वो अपने जैसे से ही निकाह कर सकता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे और जिनकी तरफ अल्लाह ताला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा। अपने अमल की नीयत से नोट कीजिए। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कैसे यल करते हैं हम अपनी माँ पे, ऐसे लगता है माँ ना हो गई, कोई हमारी मेड है। हर एक हम में से सोचे कि मैं अपनी माँ से कैसे बोलती हूँ। और अगर अब आपकी माएँ दूर हैं या आप चली गई दुनिया से, तो माफ़ी मांगे, क्योंकि माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह दुनिया में भी ज़रूर सजा देता है। अकूक कहते हैं इस काम को, उकूकुल वालिदैन। बाकी कामों पे तो अल्लाह आखिरत में पकड़ेगा ना। जो माँ बाप से बदतमीजी करता है दुनिया में ज़रूर रोएगा, किसी मुकाम पर उसकी माँ उसके आंसू नहीं पहुँचने वाली होगी, फिर उसको याद आएगा कि ये मुझे सज़ा मिली अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की या बाप के साथ। इसी तरह दूसरा, वो औरतें जो मर्दों की मुशाबहत करें, लुक लाइक मैन, क्या फ़र्क पड़ता है, सब एक जैसे सब पहनते हैं। कभी हमने इस चीज़ पे गौर किया? बाज़ दफ़ा ड्रेस ऐसे होते हैं, एक ऐसी जगह थे हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पर्दे का एहतमाम था और उन्होंने लेडीज़ रखी हुई थी सर्विंग के लिए, लेकिन चूंकि उनका ड्रेस पैंट शर्ट था तो बार बार जब भी मेरी उन पर नज़र पड़े तो मैं एकदम चौंक के अपने दुपट्टे को संभालूँ कि मर्द आ गया। लेकिन वो मेड्स थी जो उनकी होती हैं, कैटर कर जो करती है ना औरतें, तो उनके ड्रेस मर्दों वाले टाइयाँ पहनी हुई थी, लेकिन हम तो बच गए, लेकिन वो फीलिंग आती है कि वो भी मर्द है ना। और तीसरा दयूस, दयूस कौन होता है? एक और रिवायत में इसके बारे में आता है कि जो अपने घर वालों में खबासत देखे और खामोश रहे, यानी शौहर अपनी बीवी को देख ले जिना करता हुआ फिर के चलो खैर है मॉडर्न हो गई है बड़ी बात नहीं है। और तीन किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह नज़रे रहमत से नहीं देखेगा। नंबर एक, माँ बाप का नाफरमान, हमेशा का नशे का आदी एडिक्टेड लोग होते हैं, और अल्लाह की राह में देकर एहसान जताने वाला। तीसरी रिवायत में फिर तीन किस्म के लोगों पर जन्नत हराम है, हमेशा का शराबी, माँ बाप का नाफरमान। तीनों रिवायतों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी, माँ बाप की नाफरमानी और अपने घर वालों में खबासत को बरकरार रखने वाला। अब वो दाऊद में है कि जन्नत में कोई दयूस नहीं जाएगा। इब्ने माजा में, जो शख्स अल्लाह ताला से पाक साफ होकर मिलना चाहता है इसे चाहिए कि पाक दामन औरतों से निकाह करे जो लौंडियाँ ना हों, दईफ रिवायत है। तो दयूस अरबी में असल में बेगैरत शख्स को कहते हैं। निसाई की रिवायत है, एक शख्स ने अल्लाह के नबी के पास आकर कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत है लेकिन उसकी आदत है कि किसी हाथ को लौटाती नहीं है, करप्ट है, किसी की दावत को छोड़ती नहीं है। आपने फरमाया तलाक दे दे। इसने कहा मुझे तो सब्र नहीं आने का, यानी मुराद ये है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आपने फरमाया फिर जा इससे फ़ायदा उठा, यानी आप नाराज़ हुए कि अल्लाह की बात सुनकर भी तुम नहीं अमल पर आ रहे। बहरहाल इसके ऊपर कई तरह की वजाहत है। यही जो रिवायत आपको बताई इसके बारे में, तोहमत लगाने के बारे में, तो आप देखिए कि उस दौर में भी इस तरह हो जाता था ना। आखिर हर तरह के लोग तो मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों के गुनाहों को दूसरों की हिदायत का ज़रिया बनाकर फिर माफ़ कर देते थे। यानी ये जिन सहाबा के नाम अगर बीच में आए भी हैं तो उनके बारे में गलत ना सोचिए या उनकी बीवियों के बारे में, बस अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ऐसा मौका बनाया कि जो उनकी एक आजमाइश हो सकती है लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। एक छोटी सी बात फिर जहन में आ गई, हिलाल बिन उमैया की जो आपको बात सुनाई है, तो मैं कल जब इनके बारे में सोच रही थी तो मैंने सोचा कि ये उन सहाबी में से हैं कि जिनके बारे में कुरान की दो मुख्तलिफ आयतें हैं ना। सूरत तौबा में इनकी अपनी तौबा की बात है और अब यहाँ सूरत जब नूर में पढ़ रहे हैं तो इनकी बीवी की बात है। तो ये भी एक आजमाइश होती है कुछ लोगों की, और जब आता है कि इनकी बात अल्लाह के नबी ने सुनी और फिर जब ये बात आयत उतरी फिर इन दोनों का लियान हुआ था, तो अल्लाह के नबी ने इन दोनों को कहा था कि देखो तुम में से एक झूठा है, ज़रूर झूठा होगा। जब उस औरत की बारी आई तो उसको भी कहा कि देखो सोच के बोलो, लेकिन आखिर वो थोड़ा सा हिली झिझकी तो फिर उसने उसके बाद वो लफ्ज़ बोल दिए। तो जब इनकी जुदाई हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखते रहना कि बच्चा इसके घर जो पैदा होता है वो कैसा होता है। अगर सुर्ख व सफ़ैद मोटी पिंडलियों वाला है तो ये हिलाल का बच्चा है, और अगर पतली टांगों वाला स्याह रंग का है तो फिर जिसके साथ इल्ज़ाम लगाया था ये उसका बच्चा है। तो वाकई जब बच्चा पैदा हुआ तो वो दूसरी सूरत पे था, यानी हिलाल बिन उमैया सच्चे थे और उस औरत ने इस तरह की बात की थी। तो अल्लाह ताला बस ऐसे मामलात में, चाहे शरीक बिन सहमा नाम है उन सहाबी का जिनके साथ तोहमत लगाई थी इन्होंने अपनी बीवी की और वो बात फिर सच थी। सब की तौबा है, तौबा तो शिर्क की भी है। ज़िंदगी में जब किसी ने तौबा कर ली, हर एक को तो हद नहीं लगती ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब एक छोटा सा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर आज के दौर में किसी को किसी का कोई ऐसा मामला पता लगे फलां ऐसी है या फलां ऐसा, खामोश, कुछ नहीं कर सकते। इवन चार गवाह भी ले आएंगे तो हद कौन लगाएगा, जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ का कानून चलेगा। तो इस्लाम का मिजाज है कैसे गंदे किस्सों को ख़त्म करें, और अपनी दोस्तों से अपने शोहरों के किस्से बयान करना, बीवियों की बातें दोस्तों से करना, ये इंतहाई नापसंदीदा है। सिर्फ़ इस सारे तरीके को ख़त्म करने का इलाज खामोशी रखें और उनकी इस्लाह की कोशिश करें। अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो ये था आज का सबक। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व सहाबी अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.